झूठ मूठ से बिगाड़ने से नहीं होता, विचार करके देखिए, विचार करके सब बतलाए, सब एकदम शांत हो गए, किसी को उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना पड़ा, बाद ही बात नहीं। ऐसे वो तेजस्वी आचार्य थे। ऐसे ही जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, ऐसे ही उन्होंने उनके शिष्यों को भी ऐसे प्रचार किया। हमारे गुरु महाराज जी को एक बार उन्होंने इलाहाबाद में प्रचार करने के लिए भेजा, वहां पर संगम में रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी प्रयाग में, तो वहां पर उनको भेजा। हमारे गुरु जी उसमें ब्रह्मचारी सफेद कपड़े में थे, तो वहां पर वकीलों की एक बड़ी भारी सभा हुई और उसमें यह लिखा गया, जैसे मायापुर से वैदांतिक पंडित श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी आए हैं, उसमें भाषण चारों तरफ सब लोग सुनने के लिए। एक क्रिश्चियन की वहां पर क्या उनका होता है चार, तो वहां का बिशप फेज होते हैं उनके, और बड़े धुरंधर भी होते हैं। वो हिंदू धर्म की जितनी कमियां नहीं, उसको खुद खुद करके ला करके और वही सब जनता को समझा करके और हिंदुओं के विपरीत सनातन धर्म का खंडन कर, अरे तुम्हारा कृष्ण काला स्त्रियों के साथ में जो विचार करता था उसको संभव नहीं करता है, ऐसे सब कंप्लेट छपवा करके और ऐसे नौकर सभा करके सब लोगों को समझाते हैं हिंदू धर्म में सब मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं है, यही सब पूछा। तो वो बिशप उस सभा में वो भी आया और एक वकील थे वहां के सीनियर, उस बिशप को ले आए जानबूझकर, और बड़ा तार्किक बिशप और आशा के भारतवर्ष में प्रचार करता था, तो वो भी वहां पर आया। तो जब सभा खत्म हो गई तो वो बिशप बैठा रहा, सब लोग तो संतुष्ट होकर के चले गए, दार्शनिक उनका विचार था, वो उस पर बोल रहे थे भाषण। तो वो वकील उसको ले आया, वकील ने कहा जैसे आपसे ये दो चार प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गया ये वकील पहले से परिचित इनका था, वो कुछ गड़बड़ करेगा। तो बिशप ने इनसे पूछा ये आप लोग एक गैया चराता है और चरवाहे का काम करता है इधर, उसका भजन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बकरी से गाय श्रेष्ठ है। बकरी क्या करती है? वो थोड़ी सी दूध देती है, 400 पैसे करती है। तो इसका जो चरवाहा था कौन? तो उनसे बहुत सिर्फ गैया का दूध, गैया तो माता है इसलिए गैया की सेवा करता था और जगत का। गैया को एक बच्चा होता है और बकरी को दो तीन चार पांच छह एक साथ में, इसलिए ये प्रजापति है। और गाय के शरीर में समस्त देवता लोग निवास करते हैं, इसलिए हम लोग के आराध्य गांव का पालन करके जगत का पालन करने वाले हैं, इसलिए उनका भजन करते हैं। तो थोड़ा सा भेंट के फिर पूछा, अच्छा तो वो आप लोगों का इससे देव गोरा क्यों नहीं हुआ? गोरा काला क्या क्यों? और कतरा की भांति काले को आप लोग इस बन रहे हैं? तो इन्होंने कहा ब्लैक इज नो कलर, यह अप्राकृत तत्व है, अवांग मन सो गोचर, और जहां पर कोई जगत का कॉलर नहीं पहुंचता है और सब कॉलर को अपने अंदर रंग मिला लेता है, सफेद में काला रंग मिला दो तो काला बना, पीला में भी काला मिला दो तो काला बना दे, कहीं भी ये और इसके ऊपर में कोई रंग लगाओ तो वो नहीं लगेगा,
खाली कमरिया पर कड़ी नहीं
लगेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे उपास्य को करते हैं जिसका कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है और वो कोई कॉलर नहीं, ब्लैक इज नो कॉलर, इसलिए हम अपराकित जो भगवान का जो रूप है वो काला जैसा आप कहते हो ऐसा नहीं, वो जैसे आंख की पुतली जब सफेद हो तो कैसे लगेगी? बेकार की हो जाएगी। केस में सफेद, यहाँ पर केवल सफेद केस हो जाए तो उसका क्या मूल्य है? तो ये काला ऐसा है जो समस्त जगत को आलो देता है, इसलिए हम लोग ब्लैक इज नो कॉलर अपराकृत कृष्ण का हम भजन करें। अच्छा तो ये कहते हैं, ये तो बतलाया, तो फिर आप लोग गौरचंद्र को उपास्य जो गौरवर्ण है उनका क्यों करते हैं? तो स्वतंत्र दृष्टि हो गया। ये हिपजियर, ये है हिपजियर मैंने, इसमें सात वर्ड लेटर है, हिपजियो मैंने, ये सात रंग वो जगत में होते हैं। हिपजियर में कौन कौन सा?
नील, असमिया, सोगुन,
अंग्रेजी में
लाल,
इंडिगो, हाँ, वायलेट, इंडिगो, वाइट, येलो,
येलो
और क्या क्या सकते हैं?
ऑरेंज, रेड,
ये सब रंग है। इन सबको मिला दो तो वो गौर वर्ण हो जाता है। सबका रंग, जितना रंग है विश्व में सबको एक साथ मिलाओ तो गौर वर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे गौरचंद्र जी हैं वो सब रंग माने राधा कृष्ण इत्यादि हैं, इन सब का मिला हुआ उनका ये विषय होता। इसलिए हम लोग इसकी उपासना, इसलिए जो जो प्रश्न किया ना और इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न किए, सबका उत्तर ऐसा दिया, वकील तो एकदम चमत्कार हो गया। वाह, आपको सचमुच में दार्शनिक विद्वान, नहीं तो ये लोग, इनको ऐसा पंडित नहीं मिलता तो अपने देश में कहते जो हिंदुस्तानी और इधर के लोग बेवकूफ होते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा उद्यमी पक्ष जाते हैं। एकदम चमत्कृत हो गया। इस तरह से जहां जहां उन्होंने अपने एक छोटे छोटे शिशुओं को जहां जहां पर भेजा, ऐसे दिग्विजय करके प्रचार इन लोगों ने, इसलिए कहा गया है जने जने शक्ति धरे
ब्रह्मांड तरीके शक्ति धरे।
और प्रभुपाद जी के जाने के बाद में फिर वही लोग कुछ रहे तो देखा जाता है जब कुछ नहीं कर ऐसे ही। ये शक्ति प्रभुपाद की थी, जब आते हैं तो महाप्रभु जैसे उनके परिकर आते हैं, इनके परिकर भी वैसे ही आते हैं। असम में शक्ति संचेर करके पृथ्वी में हरि नाम का और भगवत भक्ति का सनातन धर्म का प्रचार करके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 1915 में अप्रकट हो गए। उस समय में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने यह बतलाया था कि हमारा कुछ भजन नहीं हुआ, हमारा जन्म बेकार का गया। श्रीमती राधिका जी कहती हैं ये कृष्ण की मैंने सेवा कुछ नहीं की, जो निरंतर उनसे मिलते हैं, अभी आज तक हमने उनका दर्शन ही नहीं किया। भक्ति का ऐसा ही स्वभाव है, बहुत दीनता स्वाभाविक होती है, और जहां अहंकार भी माना है तो समझे भक्ति का लेश नहीं। तो गौर किशोर दास जी महाराज ने कहा कि हमारा जीवन दुखा गया, भगवान का भजन हमसे नहीं हुआ, क्यों भोजन करने में इधर उधर घूमने में हमने गवा दिया, इसलिए तुम लोग एक बात करना, मर जाऊं तो हमारे पैरों में रस्सी बांध करके नदी के गलियों गलियों में हमको घी फेंक करके ले जाना और अंत में गंगा नदी में हमको हमारा शरीर, अंततः धाम की धूलि तो हमारे शरीर में लग जाएगी। उन लोगों ने, बाबा जी जो थे वो अप्रकट हो गए, प्रभुपाद जी को अभी तक संवाद नहीं मिला था, उन्होंने लेकर के तैयारी की, नारियल की मोटी सी रस्सी खरीद ले आए और बाबा जी को पैर बांध दिया और बांध करके धरती पे ले। इतने में प्रभुपाद जी को खबर मिली, उस समय में प्रभुपाद जी सब ब्रह्मचारियों के साथ में, हमारे गुरु जी भी उसमें थे, गुरु जी को और सब जितने थे, कुंज बाबू, उनका नाम क्या था,
बिहारी
विद्याभूषण, अनंत वास्तविक इत्यादि जितने भी सब ब्रह्मचारी थे, अब तब उनकी जब प्रभुपाद की सभा लगती थी ना, मानो देवराज की सभा लगती थी। कौन सब लोग वहां पर, तो सब लोगों को लेकर के नवदीप में आए कुलिया ने। देखा जी सब लोग तैयारी में हैं, इनको पैर बांध करके ले जाएं। तो ये परिकर 50 काठ या 100 ब्रह्मचारी सन्यासियों के साथ में आए, तो देख करके थोड़ा सा सहम गए कर गए। और बात भी बात होने लगा, इन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा, वो वैष्णव थे, हमारे गुरु हैं, तुम लोगों के गुरु नहीं, और वो लोग जानते थे हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा तुम लोग कोई भी उनका शिष्य नहीं है, मैं एकमात्र उनका इकलौता शिष्य हूं, तुम लोग का अधिकार नहीं है जो उनके अंकुश कर। उन्होंने दिनता से ऐसा कहा और उनको सचमुच तुम उनका पैर बांध करके गली गली में घुमाएगा और गंगा में डालेगा कि वो पवित्र हो जाए, जिनके पद से गंगा भी पवित्र होती हैं, और उनको तुम लोग पवित्र कर देगा। वो तो सब समय धाम में रहते हैं, अभी भी धाम में है। झगड़ा विवाद होने लगा, मार्केट की नौबत आई, वहां के थाना दरोगा और सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए, काफी लोग भी आ गए। उस समय में प्रभुपाद जी ने खड़े होकर के कहा, वो लोग झगड़ा का मेट मार्च करने की प्रतिक्रिया करने लगे, प्रभुपाद जी खड़े होकर के दंड लेकर के खड़े हो गए और बोले, यदि इनका सचमुच में मैं इनका एकमात्र शिष्य हूं, मैं जैसे ये बाल ब्रह्मचारी थे, मैं भी बाल ब्रह्मचारी हूं, यदि कोई इनका कोई शिष्य हो जो आज तक जीवन में कभी भी विवाह शादी नहीं की हो, स्त्रियों के प्रति उनकी नजर न गई हो, तो उनके शरीर को स्पर्श करे और वह झूठ बोलेगा तो साथ ही साथ मारा जाएगा, मैं कहता हूं। यदि कोई ऐसा करे, इसलिए इनका कोई ऐसा शिष्य हो जो बाल ब्रह्मचारी हो जन्म से ही, तो वो उनका शरीर स्पर्श कर दे। सब लोग एकदम थर्रा गए, कोई नहीं उठा। इसके बाद जैसे एक वर्ष के अंदर में जिसने कभी भी स्त्री चिंतन नहीं, स्त्री का स्मरण नहीं किया हो, वो आकर के इनका शरीर स्पर्श कर, कोई नहीं आया। और जैसे आज 15 दिन के अंदर में कभी ऐसा चिंतन नहीं किया हो, सत्य में भगवत भजन चिंतन किया हो, जैसे ये बाबा जी महाराज, तो इनका शरीर स्पर्श कर, और नहीं तो इनका ये सब फट जाएगा, मर जाएगा। कहिए आज रात तक भी ऐसा कोई बाबा जी हो जो ऐसा नहीं किया हो, मन के द्वारा चिंतन है, वो उनको स्पर्श कोई नहीं। और जाकर उन्होंने कहा कि मैं यदि बाल ब्रह्मचारी हूं, जन्म से कभी मैंने स्त्री को देखा नहीं, चिंतन नहीं किया, देखना भी देखा भी नहीं, तो मैं इनको अपनी गोदी में लेकर के और ले जा रहा बस। साथ ही साथ जाकर के उनको उठा लिया गोदी में, और ब्रह्मचारी सब मिल गए, और ब्रह्मचारी सब मिल करके गंगा के किनारे लेकर के वहीं पर उनकी सुना। सब लोग जहां तहां थक गए, पुलिस को कोई काम करने की जरूरत नहीं रही, ऐसे तेजस्वी थे। कुछ दिनों के बाद में वहां 4-5 वर्ष रहा, गंगा में बाढ़ आई, उन्होंने गुरु जी को आदेश दिया कि बाबा जी महाराज की समाधि बहने वाली है, तुम उसको ले आओ मायापुर में राधाकुंड के तट पर उसकी स्थापना। बस ले आकर के मायापुर में अभी यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, जिसके जिसको श्याम कुंड राधा कुंड मान करके प्रभुपाद जी भजन करते थे, और गिरिराज गोवर्धन वहां पर रखती है। इस तरह से वहीं पर जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वानंद सुखद कुंज राधा कुंड, और हमारे रूप सनातन जी ने जहाँ रहते थे वहां पर भी ऐसे ही कर दिया। तो श्याम कुंड राधा कुंड कदम के थे, समाल के थे, और वहीं पर कुंज में बैठ करके भगवान का भजन करते, ऐसे ही उन्होंने उसी के किनारे लेकर के अपने हाथों से पुनः उनकी समाधि, आज भी वहां पर उनकी समाधि है मां चंद्रशेखर भवन। उन्होंने 1915 में वो गप हुए, और 1918 में इन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया, महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, और एक दंड उनका था, क्योंकि उस समय में त्रिदंडी सन्यासी उस आर पार में कहीं था ही नहीं, वही संन्यास के ऊपर चली, सातचंद्र में संन्यास मुक्त हो गया और दक्षिण में था तो उन्होंने भगवत भजन के लिए निष्ठा के लिए वैसा लिया था। नित्यानंद प्रभु जी भी सन्यासी थे, कोई कहते नहीं वो सन्यासी नहीं थे, नहीं सन्यासी थे क्योंकि अपना दंड उन्होंने तोड़ दिया था और महाप्रभु जी ने अपने हाथों से नौतीस नहीं गंगा में बहा दिया। भागवत में ऐसा भी था,
वहां तो दंड नित्यानंद तोड़ दिए,
पहले तो नित्यानंद को रुके, महाप्रभु जी तो सब लोग सन्यासी मानते हैं। तो वो धारा चल रही थी, हमारे भक्ति कल्प वृक्ष, प्रेम कल्प वृक्ष के मूल अंकुर हैं, उनके नौ शिष्य थे सन्यासी, उनको उसका एक एक जड़, नौ जड़ हो, एक जड़ होता है नीचे एकदम गहरा पानी के अंत तक पहुंचता है और वही पानी खींचता है और साइड में जो जाने वाली सब जो जड़ें हैं उसको पकड़ करके इधर से इधर से इधर से उधर से उसको साइड। तो भक्ति का मूल तो वहीं से माधवेन्द्रपुरी बार और चारों तरफ नौ जो जड़ें निकली वही परमानंदपुरी, ईश्वरपुरी, रंगपुरी और सब। तो ये लोग नौ भक्ति के ये जड़े थे, वो सभी सन्यासी हैं, एक भी गृहस्थ नहीं, सभी लोग सन्यासी। नित्यानंद प्रभु जी से स्वर्ग दामोदर जी सन्यासी थे, सब लोग महाप्रभु आने के बाद में पुरी में सब लोग एकत्रित हो गए। अब उन्होंने कहा जैसे मैंने सन्यास किस लिए लिया है, केवल मुकुंद निष्ठा के लिए, संसार वाले अपसंग नहीं करेंगे, संसार को त्याग करने के लिए बस। इस तरह से हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी इन्होंने संन्यास भी लिया, किंतु संन्यास के भी गुरु हैं। इसलिए नहीं लिया कि महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर इत्यादि जिस पेज को ले रहे हैं हम उसको अपवित्र नहीं करेंगे, इस भावना से श्रद्धा के लिए नहीं लिया। हमारे इस महापुरुष पुरुष ने देखा आरूप सनातन जिस देश को लिए हैं परमहंस देश, हम ऐसे योग्य नहीं है, वो वर्णाश्रम से अतीत वो है, हम तो वर्णाश्रम के अधीन उनके दासों के दास के दास हो सकते हैं, अभी साधारण रूप में सन्यासी और ब्रह्मचारी का ही रूप लेंगे और सब लोगों की भजन करने के लिए योग्य नहीं है। पहले जैसा भी संन्यास होता हो गोपी भाव के लिए नहीं था, आजकल का संन्यास क्या है, मैं गोपियों के भाव को गुरु जी ये भाव के, इसलिए भजन करने के लिए हम लोगों का निष्ठा के लिए भी और इसके लिए, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब इसको नए सिरे से विद्वान व्यक्तियों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में महाप्रभु की विचारधारा को प्रचारित करने के लिए बाबा जी देश के द्वारा नहीं होगा, इसको सभी लोग बना कर नीच दृष्टि से देखते हैं, ये सब बड़े ब्रह्मचारी कुछ जानते नहीं, बस कोई मर गया तो ये मृदंग और चौताल के साथ में जाकर के कर सकते अस्त्र प्रहर करते हैं पैसे लेकर। शुद्ध भगवत भजन का कोई भाव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने पुनः से वैष्णव धर्म की को प्रचारित करने के लिए उन्होंने संन्यास देना त्रिदंड, स्वयं उन्होंने रामानुज संप्रदाय में त्रिदंड है उसी के अनुसार उन्होंने त्रिदंड वेश धारण किया। समस्त ब्रह्मचारियों को जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं और भजन पराये हैं उनको संन्यास का वेश और प्रचार, बाबा जी का वेश उनको दिया जो केवल अक्षर रहे उसे जानते नहीं है, भजन करना चाहते हैं तो उनको बाबा जी दो चार को दे, बाकी सब लोगों को जो तेजस्वी हैं प्रचार कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, हजारों लोगों को भजन करा सकते हैं, उनको आजकल कुछ विकृत हो रहा है, जिनको कफ का दाव भी नहीं दिया है, भजन का राज्य का कफ का ये नहीं कुछ जानते नहीं, वो लोग सब सन्यासी उनको दे दिया और आजकल वही लोग परस्पर झगड़ा करके बर्दाश्त करते हैं। इसलिए जो कि व्यक्ति सन्यासी होकर के प्रचार करे ये तो अच्छा नहीं है, इसलिए प्रभु पाठ नहीं कहा। इसलिए बहुत जल्दी से प्रचार होने का कारण था समर्पित ब्रह्मचारी ये सब आए और उन्होंने नगर नगर गांव गांव सर्वत्र उन्होंने प्रचार करा, एक पैसा लेना नहीं। कल हमारे पास में यहाँ के चतुर्वेदी एक आए, बहुत बोलने वाला बोला, और वो सभी तो बोलने वाले होते ही हैं, तो कुछ पढ़ा लिखा था, तो दोनों आए युवक थे, करीब 35-40 वर्ष के थे हमारे पास में। जो बोल रहे थे हमने भाई बुलाओ हमारा दरवाजा खोल दो, तो वो लोग आ गए बैठे, मैंने कूद करके खड़े होकर के उनका ये अभिवादन करके उनको बैठाया बड़े प्रेम से, कैसे आपका दर्शन हुआ, कैसे दर्शन उनको दिया आप लोगों ने। बोले जी आजकल हमारा समाज बिगड़ गया है, मुसलमानों को लेकर के बजाते हैं सब जनेऊ चनेऊ सब, इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ से वैष्णव लोग चलें और हमारे लड़के का जनेऊ होगा उसमें चल करके कीर्तन करें ठाकुर, हमारी पुरानी गौरव बहुत। लेक्चर किया इधर उधर का सब लेक्चर करने के बाद मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई, उम्र तो 40-45 वर्ष की, 40-45 वर्ष से तो अभी हमारा 50 वर्ष हो गया यही मथुरा में, तो तुम्हारे जितने बड़े बड़े चौबे लोग हैं मनोहर लाल शास्त्री हैं वासुदेव चतुर्वेदी इत्यादि इतने मूर्खन्न विद्वान हैं सब। देखो हम लोगों को ये सब बच्चे आए हैं, सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, बड़े बड़े खनिज घर के हैं, सब छोड़ करके आए हैं, भजन करने आए हैं, भजनिया बनने के लिए नहीं आए, तो तुम लोग हम लोगों को बदनिया बनाना चाहता है, हम लोगों को दो चार पैसे देकर आ रही, ये तो उतनी संपत्ति और विद्वता और नौकरी चाकरी सब छोड़ करके यहाँ पर आए। देखो तो कैसे सुंदर सुंदर किस्म है, अच्छे विद्वान लड़के हैं ये सब। मैं यदि कभी दूंगा ये जाओ तो इनको बड़ा दुख, हमारे आदेश को ये जरूर पालूंगा, किंतु मुझको देने में बहुत हृदय मेरा होता है। आप लोग कदर नहीं जानते हैं वैष्णव का, वैष्णव की स्थिति, तो आप लोग यही चाहते हैं कि हम लोग भजन छोड़ करके रोज रोज कहीं ना कहीं एक जनी होगा, कहीं नहीं मरेंगे लोग और हम फलों लेकर के हम लोग यही चाहते हैं। मैंने कहा कि हम लोग पैसे लेकर के सप्ताह पाठ अखंड पाठ और ये सब नहीं करते हैं, हमारे बच्चे नहीं करेंगे, ये लोग भजन करने के लिए, और सब अच्छी तरह से सब समझा दिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके दिखा। जो भजनिया आजकल भजने में 5,000 रुपया लगता है, बाजा करने 5,000 लगता है ना, तो तुम चाहते हो बिना पैसे के लिए बजनिया नहीं है, ये बताना चाहिए। ये घर बार छोड़ करके बड़े त्याग करके भगवान का भजन करने आए, अंत में वो समझ सकते ऐसे दृढ़ रह करके तुम लोग भी भजन करना, बीच तो एक तरफ में रहेगा हम अकेले रहेंगे किंतु भजन करेंगे दूसरों से करेंगे। प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे जैसे भी शिष्य आए भी वैसे ही ऐसे ऐसे अद्भुत सर बड़ी विद्युषा विद्युषी महिला और लड़के भी ऐसे तेजस्वी, तुम लोग भी ऐसे तेजस्वी बन करके भगवान का। तो बहुत बहुत दास आवाज अंत में उनकी समाधि यहां पर दी गई। फिर उन्होंने पत्रिकाएं निकाली कितनी भाषाओं में और सर्वत्र प्रचार किया, ये बच्चे सब ब्रह्मचारी लोग एक लकड़ी का बक्सा दे दिया चाबी ताला लगा करके, और चाबी अपने पास में प्रभुपाद रखे, और वो बेचारे ट्रेनों में कानों में बसों में बाजारों में हाथों में कह दिया था कि दो एक पैसे से अधिक मत लेना, फूल माधुबरी की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा, और उनसे कुछ कहना ये भगवत भजन ही जगत का जीवन का मूल्य, और मायापुर में आना या कलकत्ते में आना, इसी तरह से थोड़े दिन के अंदर में उन बच्चों के द्वारा उन सन्यासियों के द्वारा पत्रिका के माध्यम से चारों तरफ में कुछ दिनों के अंदर में ही उन्होंने 1921 में 18 में उन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया। कलकत्ते में पहले उनका आश्रम था, उनके आश्रम में ये पहला आश्रम बना कलकत्ते में उल्टा डी और किराए के मकान में, और उसमें भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी, कुंज बिहारी विद्याभूषण जी और सब कुछ लोग गृहस्थ भक्त रहते थे। त्यागी तो कोई था नहीं उस समय। कुछ दिनों के बाद में एक नरहरी ब्रह्मचारी आए और गुरु जी आए, तो नरहरी प्रभु जी अर्चन करते थे और प्रभुपाद जी कांसर बजाते थे, भजन भक्त सब अवसर की और सब अर्चन के समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इसके बाद में गुरु जी आए, गुरु जी को देख करके उस समय में 16-17 वर्ष के नौ जीवन उन्हीं उसी तरह से जड़ विद्या का तपस्या करके आए। चैतन्य से शामिल के पदों को लेकर के और वही सब उस समय कॉलेज में चैतन्य से सामृत एम ए इत्यादि में वो सब पाठ्य पुस्तक थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। आजकल तो रामायण इत्यादि कुछ रखते नहीं, पहले उत्तर कांड का कुछ रखते थे अपने वो शादी से, तो उसको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर लोग आते थे बच्चों से, तो उसका अर्थ ठीक नहीं कर पाते। जुए स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण ने तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकार, अब इसका अर्थ कोई क्या करेगा। गुरुमुख विद्या है ना, स्कूल कॉलेज में ये सब चीजें कहां से मिली। भेदाभेद भेद भी है अभेद भी है, ये कैसे बतलाएं। तटस्था शक्ति किसको कहते हैं, जीव का स्वरूप कहता है ये कैसे बतलाएं। कृष्ण अव्यय ज्ञान तत्व है, अव्यय ज्ञान कोई शब्द ही लोग सीखे। अव्यय ज्ञान माने जो कुछ है सब भगवान की शक्ति से सीखता है, जो कुछ भी किस शक्ति से ये किस जगत, जड़ शक्ति से ये जड़ विश्व, और भगवान की एक तटस्थ शक्ति है जड़ भी नहीं है, चेतन है किंतु चेतन में खो जाने वाली है, जड़ में खो जाने वाली है, ऐसे उसी से जीव। जीव ऐसा मत समझना कि जीव तटस्था शक्ति से उत्पन्न है, ऐसा मत समझना, ये गलत हो जाएगा। कैसे समझना होगा, ऐसे समझना गीता में लिखा ममई वंशो जीव लोके जीव भूत, जीव हमारा अंश है, और भी शास्त्रों में लिखा है जीव भगवान का अंश है, और कहीं लिखा है तटस्था शक्ति से पैदा हुआ है। कौन सा ठीक है, जीव गोस्वामी ने इसका सामंजस्य किया, तटस्था शक्ति से जीव नहीं उत्पन्न हो सकता, और भगवान का अंश भगवान का खंड नहीं हो सकता, वस्तु परिणाम नहीं है शक्ति परिणाम। तो भगवान ऐसे हैं सब चिदानंद स्वरूप, सब चित आनंद सर्वशक्तिमान है, अचिंत सर्वशक्तिमान है, रस के समुद्र हैं, उनके अंदर में सब जड़ जगत जीव जगत जो कुछ सब इन स्वरूप रूचि में करता है, और उनमें रहते हुए भी वो सब में वर्तमान। तो भगवान ऐसे अचिंत शक्ति परायण हैं कि कभी कभी किसी शक्ति को छोड़ करके भी प्रकाशित हो सकते हैं, जैसे सत चित आनंद है ना, तो सत चित आनंद तीनों को गुप्त कर दिया तब उसको कहते हैं निर्विशेष, भगवान का वो ज्योति अंगों की ज्योति। ये ज्योति कहां से निकलती है, जैसे हम अभी प्रकाश देखते हैं, प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से, किंतु हम घर के भीतर में बैठे हैं, बाहर में सूर्य का प्रकाश है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका गुण क्या है, ये बतलाना बहुत कठिन है, किंतु है सभी कुछ ज्योति। तो वैसे भगवान के अंग कांति का नाम उसमें भगवान की सब चित आनंद में से केवल चित शक्ति का आंशिक विकृत प्रतिफलन है ब्रह्मा, ना? उसको कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान ने ऐसा किया कि यहां पर तीनों शक्तियों को हटा दिया और निशेष रूप में केवल प्रकाश के रूप में दिख पड़ रहा है, इसको कहा जाता है। भगवान कभी कभी ऐसा होता है जो अपने आनंद शक्ति को हटा करके केवल आंशिक रूप में शीत और आंशिक रूप में सब दोनों को, ये कौन सा रूप है? यही परमात्मा है, ये जीवों के हृदय आंशिक रूप में सब, आंशिक रूप में शीत, अंगों की परिणाम की उनकी कल्पना की जाती है, क्योंकि ये दो ही गुण आनंद रूप में नहीं है, तिरोहित है। कभी कभी सच्चिदानंद परिपूर्ण रूप में प्रकाशित करते हैं, ऐश्वर्य के चूड़ांत और माधुर्य का भी पूर्ण रूप में, तो उसको कहते हैं। जब तो केवल अढ़ाई वर्ष अपना प्रकाशित करते हैं सच्चिदानंद, किंतु अढ़ाई वर्ष ही, तब उनको कहते हैं। केवल वहां भयंकर रूप जब प्रकाश करते हैं उसमें आनंद भी तिरोहित है और उसका प्रकाश नहीं है और सबका, तब उनको कहते हैं निशेष। वैसे भगवान का एक ऐसा समय है, ऐसा करते हैं जब उनका पूर्ण रूप में आनंद, पूर्ण रूप में सब और पूर्ण रूप में ठीक, ये न रह करके आंशिक रूप में रहेगा और केवल तटस्था शक्ति से युक्त रहते हैं, जीव शक्ति से युक्त रहते हैं और सब शक्तियों को हटा देते हैं, और उसमें भगवान का जो अंश होता है केवल मात्र तटस्था शक्ति युक्त भगवान का, उसको कहते हैं जी। जब भगवान सच्चिदानंद होते हैं, संपूर्ण चित, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण ज्ञान, सच्चिदानंद परिपूर्ण उनका जब अंश होगा तो उनको कहते हैं स्वांश अवकाश, स्वांश स्व अंश माने भगवान का अंश। जब अपनी केवल किसी शक्ति को किसी जीव में प्रकाश करते हैं तो उसको कहते हैं गुणावता, आवेश अवकाश। और जब भगवान में केवल तटस्था शक्ति रहती है और सबको तिरोहित कर रखते हैं, हटा करके रख देते हैं और केवल तटस्था शक्ति से जुटते हैं, उस समय उनका जो अंश रहता है वही जीव है। ये दोनों बात इसमें रह गया, तटस्था शक्ति से भी हो गया और इधर भगवान का भी अंश हो गया। तटस्था शक्ति युक्त भगवान के अंश को अल्प परिमाण में आनंद है, अंत परिमाण में अंश थोड़ा सा ज्ञान भी है और उसका स्वरूप भी है, इसलिए माया उसको ढक लेती है और बद्ध कर देती है। भगवान को कभी भी माया नहीं ढक सकती है क्योंकि उसमें पूर्ण प्रकाश है। इसलिए कृष्ण विभु चैतन्य है, जीव अणु चैतन्य, यही हम लोगों के संप्रदाय की विशेषता है। और उन्हीं का यह अंश होने के नाते भगवान से भेद भी है, इसलिए हम लोगों के सिद्धांत का नाम है अचिंत भेदा भेदवाद। प्रभुपाद ने इसका
सिद्धांत,
यदि प्रभुपाद जी नहीं आते तो बस निर्जन में बैठ करके वही हरे कृष्ण मैं गोपी हूं और उसके बाद में मर गया, बस इतना ही सबको। किंतु इन्होंने पुनः वैष्णव धर्म का प्रचार करके भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से और उनके उपदेश से पुनः भक्ति भगीरथ का इन्होंने सारे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। थोड़े दिन के अंतर में यदि और 10-5 वर्ष रहते तो न जाने क्या होता, अपना समय हो गया। जैसे महाप्रभु के लिए अद्वैताचार्य ने संदेश भेजा, बाउल कहिया थे कहियो बाउल के बाजारे ना बिके चाउल और काजे ना आउल, महाप्रभु जी एक पागल, अद्वैताचार्य जी पागल, एक पागल ने एक दूसरे पागल को बनाया जगत को पागल बनाने के लिए कृष्ण प्रेम में। जब इतना बाजार में चारों तरफ में प्रेम हो गया तब उसकी जरूरत नहीं हुई, तो कहते काजे ना কাজে
কাজে নাই তো আউল
আউল আউল মানে আকুল অভ্যস্ততা নেই গই অব জরুরত নেই বাজার মে চাউল হ্যায় দোকান পর কিন্তু লেনে বালা নেই হ্যায় সবই কো ঘর মে চাউল ভরতি হ্যায় ইসলিয়ে অব দোকান কো বন্ধ কর দেনা হি আচ্ছা তো ওয়েসে হি ইনকা দিয়া অন্ত মে উনহোনে জিস দিন ইনকো জানে কা হুয়া সব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সব কলকাতে মে উপস্থিত উনকো উপদেশ কিয়া দিয়া উপদেশ দিয়া অন্তিম উপদেশ তুম লোক ভি সুনো আর ওয়েসে হি পালন করনে কি চেষ্টা করনা হম লোক কো ভি পালন করনা চাহিয়ে জীবন মে হমনে ভজন করনে আর করানে কে লিয়ে বহুত লোগোঁ কো কষ্ট হমনে দিয়া বহুত সে লোক হমকো সমঝ নেই পায়ে ইসলিয়ে হমারি বিরোধিতা উনকে প্রিয় লড়কো কো জো সব প্রকার সে যোগ্য গুণী সুন্দর সুকান্ত থে মেনে আকর্ষণ কর লিয়া ইসলিয়ে ও সবই বিরোধী হো ব্যবসায়ীয় কে ধর্ম কে ব্যবসায় বালোঁ কি রোজি রোজি বন্ধ হোনে লগি উনকি দোকান নেই চলতি থি ইসলিয়ে ও হমারে বিরুদ্ধ হো গে ইসি তরহ সে সমাজ কা বহুত কুছ অঙ্গ জো হমারে বিচারো কো নেই সমঝ সকে উনহোনে বিরুদ্ধতা কি কিন্তু এক না এক দিন ও সমঝেঙ্গে যে মানে জগত কে কল্যাণ কে লিয়ে এসা কিয়া হ্যায় মে সত্য কে প্রচার কে লিয়ে ভগবান কে এক পয়সা কো বচানে কে লিয়ে মে লাখ লোগো কো কত্ল কর সকতা হুঁ ইন চিজো কো লোগো নে সমঝা নেই হমারি নিষ্ঠা কো নেই সমঝা ইসলিয়ে হমারে বিরোধী কিন্তু এক দিন আয়েগা জব সমঝে এক বড় খর বিদ্বান কা নাম নবদীপ কে ও সর্বদর্শন আচার্য উনকা নাম থা গোপেন্দু গোস্বামী বড় ভারি বিদ্বান গোপেন্দু গোপিন্দু গোপমে ইন্দু মানে কৃষ্ণ কাল প্রভুপাদ জি উনকো ও প্রভুপাদ কে বিচারো কা প্রতিবাদ করতে থে ও স্মার্ট বৈষ্ণব স্মার্ট মত কো মানে বালে শঙ্কর যে ওই হ্যাঁ ভগবান ওই হ্যাঁ কৃষ্ণ ওই হ্যাঁ রাম ওই হ্যাঁ দুর্গা জি ওই হ্যাঁ আর সব জীব হি ব্রহ্ম হ্যাঁ সব জিতনে জীব হ্যাঁ সব ব্রহ্ম হ্যাঁ সর্বাঙ্গিদম সর্বম খলিদম ব্রহ্ম প্রভুপাদ জি উনকা বিচার কা খণ্ডন করতে প্রভু বিচার কে ও খণ্ডন করনে কি চেষ্টা ইসলিয়ে উনকা নাম প্রভুপাদ মে গোমফেন্দু রাম গোমফ মানে গো ইন্দু ভগবত ভক্তি সে কোই সম্বন্ধ নেই নাম করনে মে বড়ে তেজ থে ও প্রভুপাদ জি জবকি প্রভুপাদ জি অপ্রকট হো গয়ে তো নবদ্বীপ মে আসপাস মে ও বহুত সবসে বড়া ভারী বিদ্বান থে তো গুরুজি নে একবার পরিক্রমা কে সময় মে উনকো বুলায়া আবেদন করে তো ও আয়ে বহুত উমর কি থি উনকি हम लोग के भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब सन्यासी लोग थे जहाँ पर कि हम लोग बैठते हैं वहाँ पर वहीं पर सबको बैठाया गया तो वो भाषण उनको देने के लिए गुरु जी ने कहा वो भाषण देने लगे तो कहा जी से हम लोग प्रभुपाद के जीवित समय में जब तक वो थे हम लोग उनकी मनना नहीं थी अब हम लोग विचार करके देखते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा था उन्होंने सब ठीक कहा था हम लोगों ने उनका विरोध किया ये भगवान की इच्छा से हुआ हम विरोध नहीं करते तो इतना प्रचार नहीं होता इसलिए भगवान नहीं हमसे विरोध उनका किराया किंतु हम अब समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ भक्ति का प्रचार किया है वो शास्त्र का विचार था हम लोगों ने ऐसा कर ये उनके शिष्य हैं भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी उनके सच्चे शिष्य हैं अभी तक कोई प्रमाण नहीं था ये मायापुर नदिया उधर में इन्होंने अब प्रमाण कर दिया ये कुलिया द्वीप है क्यों कोलदेव को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया इनकी बुद्धि को मैं बलिहारी जाता हूं कोई इसको कुलद्वीप नहीं कहता था उसको नवद्वीप मानते थे और उधर वाले को मायापुर नहीं मानते हैं नवद्वीप वाले सब इन्होंने पक्की व्यवस्था कर दी और मायापुर में यहाँ पर उन्होंने कोलदीप की स्थापना कर दी और कोलदेव को बैठा दिया और यहाँ पर बैठ करके हम लोग की छाती पर प्रचार करते हैं माया के उस पार में इस बात को कुलिया जी अपराध रंजन का अंत में बहुत दुख के साथ में ये उसने कहा था ये प्रभुपाद को हम लोग समझ नहीं सके, एक न एक दिन समझेंगे प्रभुपाद जी ने कहा था, अब सब लोग समझते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी अति मत्स्य चरित्र के महापुरुष, वो यदि नहीं आते आज विश्व में महापुरुष जी का यह प्रचार हम नहीं, हम लोग भी ये सब बातें नहीं सुनते भगवत भजन की बात, ये प्रभुपाद ने थोड़े दिनों के अंदर नहीं पत्रिका के माध्यम से अपने सन्यासी ब्रह्मचारियों के माध्यम से अपने प्रचार के माध्यम से वो कहते थे ये मृदंग होता है ना, मृदंग भी कीर्तन में सहायक है किंतु बृहद मृदंग जिसका स्वर विश्व में सर्वत्र गूंजता है ये बृहद मृदंग एक है, इसके माध्यम से पूछा इसके द्वारा सब देशों विदेशों में अपने प्रचारक भेज करके धाम की परिक्रमा उन्होंने की। भक्ति विनोद ठाकुर ने धाम परिक्रमा लिखा, प्रचार भी किया और एक सबसे बड़ा काम किया ऊपर बंदर है सर, एक बड़ा काम किया जो सनातन गोस्वामी नहीं कर सके, जी गोस्वामी नहीं कर सके, पीछे के आचार्य लोग नहीं कर सके, भक्ति विनोद ठाकुर भी समाज के दर्द के मारे उसका प्रचलन नहीं किया, वो काम किया। यदि शूद्र भी भगवान का भजन करता है तो उसको वो ब्राह्मणी है। दूसरी बात, स्त्रियां पहले सालग्राम की पूजा नहीं कर सकती थी भले ही उनकी दीक्षा हो, गोसाई लोग देते थे और उनका हंसा भी नहीं खाते थे। इन्होंने कहा जो हरिभक्ति विलास में ऐसा लिखा है और भगवान का भजन करने वाला उपवैत ग्रहण करके ब्राह्मण होगा वो भजन कर सकता है, स्त्रियां भी सालग्राम शिला सेवा कर सकते हैं। उन्होंने दीक्षा दे करके और उनको योग्य बना करके और ये संसार को दिखलाया, इसी का सबसे विरोध उस समय में हुआ था। एक समय की बात है, एक समय की बात है, उनके एक शिष्य थे गृहस्थ, उनका नाम था सनातन दासाधिकारी, हमारे नारायण प्रभु आते हैं उनके पिता, वो भी लंबे चौड़े बड़े सुंदर सुकाम पढ़े लिखे तो उसने नहीं सिर्फ बड़े, वो उनके साथ में रहते थे नैमि महाराज जी के साथ, तो वो उनकी लड़की की शादी तो वो तो जाकर के अपना गृहस्थ वैष्णव थे हमारे, उनको भी उम्मीद था शादी तय हो गई, कल बारात आने वाली है, सब सामान खरीद लिया गया कल लड़की की शादी, गांव वालों ने सब ने मिलकर के कहा अरे ये तो जनेऊ पहनता है और हरि नाम करता है और मांस मछली हम जो खाते हैं नहीं खाता और हमारे बीड़ी सिगरेट या वो गुटखा होता है ये नहीं खाता है, इसलिए हमारे समाज से ये बहिर्भूत है, इसको समाज के किनारे हम लोगों ने कर दिया है, इसका चुआ पानी हम नहीं पीते क्योंकि ये हुक्का नहीं पीता है और अंडे या मछली नहीं खाता है, इसलिए इसको हम लोगों ने जाति से बाहर कर दिया है और उसका विवाह को कटवा दिया। विवाह करने वो आया ही नहीं लड़का और न बारात आई, उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर आम मीठे मीठे अच्छे अच्छे सब फल ले आए थे, सब्जी ले आई थी, मिठाई घर में बनी थी, सब एकदम पूरी तैयारी थी। शाम हो गई तो पता लगा जैसे वो विवाह नहीं करेगा, लड़के वाला सब ये बड़े दुखी हो गए, घर में भी बड़ा सब लोगों को सांत्वना दी और शाम को ही वो सारा सामान बनवा करके गाड़ी से लगवा करके कलकत्ते में बाग बाजार मठ में प्रभुपाद जी के यहाँ पर कोई नैमि महाराज के साथ में रहते थे उनको दिया और उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने वहां पर जितने ब्रह्मचारी थे बड़े खुश हुए सनातन प्रभु आए हैं, कभी आते हैं तो किसी को गमछा देते हैं, साथी देते हैं, किसी को छाता दे देते हैं, किसी को गंजी देते हैं, जो कोई जरूरत होती है वो आकर के सब ब्रह्मचारियों को देते थे और बड़े वो प्रसन्न ब्रह्मचारी रहते, किसी चीज की जरूरत होती ना तो उस प्रभु अमर साबन में कतो लागे पौधा दिए दिन टिक्की नहीं दिए, हमको ये कपड़ा नहीं है धोती नहीं है, अच्छा ले आकर के सबको बांटते थे। उन्होंने कहा जाए तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर सुंदर आम और मिठाई सब ले आई है और बांटने लगा मठ में। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए जाए प्रभु जी आज इतना सब ले आए। तो प्रभुपाद जी ने नहीं महाराज से पूछा जैसे इतना जो लाया किस लिए लाया। उन्होंने कहा बड़े दुख की बात है उसकी लड़की की शादी आज होने वाली थी और बारात नहीं आई। लोगों ने काट दिया कि ये तो जनेऊ पहनता है और भगवान का भजन करता है मांस का खाता नहीं है और जो लोग की दीक्षा नहीं उनके हाथ का पानी भी नहीं पीता है समाज से कोई संबंध नहीं रखता है इसलिए उसकी शादी को पकड़ा दिया। बस आंख से लाल हो गई प्रभुपाद जी और उन्होंने कांपते कांपते कहा ऐसा समाज बहिर्मुख समाज ध्वंस हो जाए ध्वंस हो ध्वंस हो तीन बार कहा। जब इस कल परसों में इसकी लड़की की शादी नहीं हुई तो मैं जन्म लेकर के उस लड़की से मैं शादी करूंगा। अब इनको सुन करके इनको बड़ा आनंद हुआ। दूसरे दिन सचमुच में वो लड़का कोई एक बहुत अच्छा लड़का था पढ़ा लिखा लड़का धनी घर का नौकरी करता था वो उनके घर से जा रहा था। सुना जैसे इसकी लड़की की शादी को लोगों ने काट दिया है तो उनके घर में आता तो सुना अरे आपकी लड़की की शादी करते तो हम मैं विवाह करूंगा हमको जरूरत नहीं है माता पिता से पूछने के लिए आज ही विवाह हमारा हो बस घर में आकर के कुछ पैसा खर्च नहीं ऐसे पैसे उनकी शादी
कमला
और उसके बाद में धीरे धीरे कमला नहीं की बढ़ी जाए। इसके बाद में समाज ऐसा हो गया खत्म वो समाज ही नहीं जाए समाज बंद हो गया। अब प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं जाते हैं उस गांव में कुछ कुछ लोग दो चार परिणाम दे दिए किंतु